ओम शांति। आप सभी का आज के दिन का अंतिम सत्र में मैं स्वागत करती हूं और मैं ये भी कहती हूं कि आपके अपने स्वयं के स्वागत में आप सभी अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर 4 o'clock से आप लोग आज उठे हुए हैं। आफ्टरनून सेशन भी हमारा थोड़ा आज लेट चला है और फिर भी 9 o'clock के इसमें मैं देख रही हूं कि कई सारे हमारे डॉक्टर्स इतने पंक्चुअल 8:45 को ही आकर बैठे हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आज का हमारा जो ये पैनल डिस्कशन है, डॉक्टर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप, तो हमारे जो आज के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर डीके गुप्ता जी, उनको सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं। साथ साथ हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं डॉक्टर एमडी गुप्ता जी, डॉक्टर उषा किरण जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी एंड डॉक्टर किरण बालाजी। अभी अभी आप सभी अपना डिनर कर आए हैं, तो आप सभी हमारे पैनलिस्ट का करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले हम सभी 1 मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूं कि आज के हमारे कार्यक्रम के पैनलिस्ट और हमारे चेयरपर्सन उनका बैजेस और फ्लावर्स के द्वारा स्वागत करेंगे ब्रह्मा कुमारी बहनें। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक सर्जरी एम्स दिल्ली में हैं और आपके करीबन 260 साइंटिफिक पब्लिकेशंस पब्लिश हो चुके हैं। 188 चैप्टर्स एंड 10 रेफरेंसेस बुक हैज डिलीवर्ड फॉर मेनी ओरिएंटेशन एंड गेस्ट लेक्चर्स इन इंडिया एंड ओवरसीज। डॉक्टर उषा किरण, आप सभी इनको जानते होंगे, दिल्ली एम्स में प्रोफेसर एंड कार्डियक यूनिट के आप हेड हैं और लास्ट 30 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में हैं। और डॉक्टर एमडी गुप्ता जी और मंजू गुप्ता जी, ये हमारे दिल्ली से सीनियर फिजिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आज मॉर्निंग में आपने डॉक्टर मोहित गुप्ता का लेक्चर सुना, जो कि आपके सुपुत्र हैं और बचपन से ही इस नॉलेज में चल रहे हैं। और डॉक्टर किरण बालाजी, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रोहतक से हैं और अपनी वॉलेंटरी सेवाएं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इवन एवर हेल्दी हॉस्पिटल में भी देते रहते हैं। थैंक यू। जैसे आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर एंड पेशेंट्स रिलेशनशिप, आप सभी का मैक्सिमम समय पेशेंट के साथ गुजरता है और कई बार रिलेशंस वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा इरिटेट भी कर देते हैं। कई बार न चाहते हुए भी हम इरिटेट होते हैं। वैसे तो शिवानी बहन ने भी मॉर्निंग में हीलिंग रिलेशनशिप में इसके आंसर्स दिए हुए हैं, फिर भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो इन हमारे डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर उषा किरण है, डॉक्टर मंजू गुप्ता, डॉक्टर एमडी गुप्ता, डॉक्टर किरण बालाजी, इनसे हम सुनेंगे कि कैसे रिलेशन्स हमें डेवलप करने हैं। और अभी मैं हमारे चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस पैनल को ओपन करें।
थैंक यू रूपा जी। सभी उपस्थित भाइयों बहनों का स्वागत। कुछ समय की शॉर्टेज की वजह से शायद ये प्रोग्राम इस टाइम रखा गया है, लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट ऐसा है जो हम सभी को कहीं ना कहीं पे महसूस होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस है। आज एक ऐसा समय आ गया है कि एक डॉक्टर की जो चॉइस होती थी, एक विशेषता होती थी, एक कमिटमेंट होती थी, डेडिकेशन होती थी, हमारे अपने अनुभव से तो यह हुआ कि पिछले 30-40 सालों में वो डाउनवर्ड जा रहा है। कारण कुछ भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो क्वालिटी में, कॉम्पिटेंस में, डेडिकेशन में काफी फर्क आया है, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है। दूसरा देखा गया है कि डॉक्टर पेशेंट एक रिलेशनशिप ही नहीं, एक ट्रस्ट है। एक मरीज डॉक्टर को अपनी स्टोरी ही नहीं बताता, लेकिन अपनी बॉडी भी सरेंडर करता। थैंक यू। जो अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो बिना ट्रस्ट के नहीं हो सकता। अब उस ट्रस्ट में कहां पर खामियां आती हैं, कहां पे धब्बा लगता है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बिटर हो जाता है। कुछ टाइम पहले की बात है कि कैजुअल्टी में कोई पेशेंट आया, नॉट सेटिस्फाइड विद द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एंड द अटेंडेंट्स बिकम वॉलेटाइल एंड सिचुएशन बिकम्स वेरी अगली, रेजिडेंट डॉक्टर्स गोइंग टू स्ट्राइक, एंड देन द आफ्टर इफेक्ट्स। Similarly, there was a patient coming in the OPD. He is not seen out of the way. He was a hospital employee. And he tears his card and throws it that, yes, I don't get privilege despite being in the institute. So the spectrum varies. Same situation comes when somebody is very sick. We know the outcome. We know the disease. Today, tomorrow, day after tomorrow, the end has to come. And how to handle that terminal stage in such a situation. How to take care of the attendants or the parents, take them into confidence so that the situation is balanced. So these are some of the issues. I think this is the time I would throw the questions to the panelist, Professor Usha Kiran, head of the Department of Cardiac Anesthesiology at AIIMS, Dr. M.D. Gupta and Mrs. Manju Gupta, who had been in MCD in Delhi and now in their own private practice after retirement. And here is Dr. Kiran, who is a neurologist from Medical College Rohtak. So we have a spectrum who have the experience, what has gone wrong in this relationship, how to handle that, and how to be careful, how can we manage them. First of all, let me ask Professor Usha Kiran that you think this relationship is now a cause of concern to the medical fraternity?
Om Shanti. Thank you, Dr. D.K. Gupta. The question is very good. Is it really a concern? And the topic is given. I think it's a major concern. 100% major concern. Because we can do anything good. Kitna bhi achha kaam karenge, par usko batana bahut zaruri hai. Aur abhi to ye time aa gaya hai ki surgery andar ho rahi hai, bar video se dikhaya ja raha hai. That is the time we have reached and it is must. Pehle bhi dikhate hain ki what is the kind of surgery we are going to do. Darane ke liye nahi, samjhane ke liye pyar se ki ye ho sakta. Nahi samjhayenge to patient to next se sab kuch dekh ke aata hai. And theek asking question ki ye wali baat aapne nahi samjhaya. And jaise doctor sahab bata rahe the, the legal issues have come up now. The violence has started. So it's better to be truthful to them, but in a very soft way, in a very humble way. And very important thing which we are listening for last 2 days, that is in a very positive way. Darane ke liye nahi, ghabrane ke liye nahi, parantu in such a positive way so that their healing starts, that the doctors, the whole team is concerned for me.
Thank you, Dr. Usha. This amounts to that there is a need to improve communication between two parties. When the doctors are comfortable, peaceful, relaxed, contented, only then they can have the art of communication with the other party, take them into confidence, spare some time, so that at least there is no gap in communication, what you are planning, what is the problem, what are the investigations to be inculcated, how the treatment will lead to either medically or surgically, and if surgically, what are the possible complications. So I think this is the basic information that has to be given and shared with the parents and signed properly, and there have to be two witnesses. That is a routine thing. Dr. Gupta, you have experience in both the worlds, the government sector as well as in the private sector. You think, what are the problems that have crept in now during the past, say, 20 years, 25 years that compelled us to discuss this issue? Otherwise, all over the world, medical profession is considered the noblest profession, and the relationship between the doctor and the patient has to be considered next to the God. But why this change recently that is bothering one and all?
ओम शांति. आज से कोई 40 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूं. 1968 में जब मैंने MBBS पास किया था, तो उस टाइम पर हम लोगों को ये कहा जाता था कि डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड. और जो हमारे सीनियर टीचर हमें पढ़ाया करते थे, उनकी हम लिटरली रूप के अंदर हम उनकी अर्चना वंदना किया करते थे. अर्थात वो इतनी अच्छी तरह से हमारे को पढ़ाते थे, लगता था कि यही हमारे मार्गदर्शक हैं. और सभी रूपेट राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर, हम अभी तक उनको याद करते हैं. और उन्होंने जो हमें पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, पेशेंट्स आर योर ब्रेड एंड बटर. तो अगर इनको अच्छी तरह से आप देखोगे, आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ना करो कि आपको जितना आप काम कर रहे हो 24 घंटे में से अगर आपकी 12 घंटे या 36 घंटे की ड्यूटी है, तो उस टाइम पे ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी. पर हम काम किया करते थे और उसका एवजा ये होता था कि हमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, जो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, वो आज दिन तक मैं उसको याद करता हूं. और आज के दिन में आप देखिएगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन है. ना पढ़ाने वाले उस हिसाब से पढ़ाते हैं, ना पढ़ने वालों का एटीट्यूड ऐसा होता है. और पढ़ने वाले भी क्या करते हैं, पढ़ करके कहते हैं पढ़ करके ही क्या करना है, मम्मी पापा के पास में है, हम कर लेंगे अपना जो हमें करना होगा. तो ना वो क्लिनिकल पेशेंट्स को देखते हैं और ना वो अपने हॉस्पिटल में आते हैं, जिससे क्या होता है कि नेग्लिजेंस कहां होगा, दैट इज एट दी रूट लेवल. अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, उसको नहीं अटेंड किया गया, तो तो कंप्लेन स्टार्ट फ्रॉम देन एंड देयर ओनली. तो उसे क्या होता है कि वो फिर इट स्टार्ट्स, और उसे हुआ क्या कि देयर इज ए लैग बिटवीन गैप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर. अगर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ये गैप बढ़ता चला गया और बढ़ रहा है आजकल, तो क्या होगा कि इट बस्ट आउट समडे. तो अब देख भी रहे हैं आजकल कोई इंसिडेंसी जो हो रही है हमारे समय के अंदर. तो इसलिए जरूरी इस बात की है कि वी हैव टू बी वेरी फेथफुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वेरी फेथफुल एंड डिसिप्लिन एंड रिसेप्टिव आल्सो फॉर द पेशेंट. क्योंकि पेशेंट जो आएगा वो कभी हमारे हाथ में अपने हाथ में लड्डू लेकर के नहीं आएगा, मिठाई लेकर के नहीं आएगा. हमारे पास तो वो हमेशा तरसते हुए आएगा, कंप्लेंट करता ही आएगा. तो हमें तो उनकी उस इलनेस को वेलनेस में कन्वर्ट करना है बाय आवर एटीट्यूड एंड बाय आवर बिहेवियर विच इज लैकिंग नाउ. तो अगर हम ऐसा अपना थोड़ा एटीट्यूड रखेंगे तो हम समझते हैं कि जो ये गैप बनता बढ़ता जा रहा है उस गैप को हम ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन डिमांड भी जो है जमाने के हिसाब से हमारी बढ़ती जा रही है, उसको भी मीट आउट करना है.
थैंक यू डॉक्टर गुप्ता. नाउ आई स्विच टू Dr. Mrs. Gupta, that you have been a gynecologist, you have also been in the government sector and private sector. You deal with ladies, and quite often in the labor, you deal with two lives, and many times serious issues arise. Normally we find that usually these are the gentlemen or the male members are coming with the patient who are volatile and create chaos and ruckus. Do you have this similar picture on the other side of the sex?
ये कहां भी दोनों तरह से क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड हमारे एटीट्यूड पर करता है. अगर डॉक्टर का बिहेवियर अपने पेशेंट के साथ शुरू से बहुत सपोर्टिव है, हम उनका विश्वास जीत लेते हैं, उनका ट्रस्ट हम जीत लेते हैं, और पेशेंट को हर स्टेप पर हम हर चीज उसके सामने उसको खोलकर समझाते हैं, तो पेशेंट्स प्रिपेयर्ड रहते हैं और उनका फेथ अपने डॉक्टर में पूरा रहता है. तो मैं समझती हूँ ये केओटिक सिचुएशंस कभी नहीं आती, क्योंकि जब पेशेंट दर्द में आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उस समय हम उसको सपोर्ट दें और उसको हर चीज से अवगत कराएं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गायनी में जब पेशेंट्स आते हैं तो हमारा ये एटीट्यूड हमेशा ही रहता है कि द कपल शुड कम, और अगर उनके फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं तो हम उन्हें भी एजुकेट करना चाहते हैं, सो दैट दे नो कि ये आज कुछ एकदम से नया नहीं क्रिएट हो गया, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है. पूछते हैं डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं. हाँ, होगा नॉर्मल डिलीवरी, बट यू नेवर नो प्रोग्रेस कैसे होती है आगे चलकर, वो उस समय डिसाइड होता है. बट यू शुड ऑलवेज टेक अ थिंग इन अ पॉजिटिव वे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा. कम से कम हम उसकी जर्नी को बहुत प्लेजेंट, रिलैक्स्ड और हैप्पी बना सकते हैं. उसके लिए हमारे यहाँ अभी जो यंग जनरेशन आई है, बहुत सुंदर उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया है, डिवाइन गर्भ संस्कार. बच्चे को आना है, माँ को कंसीव करना है, लेकिन दोनों को किस प्रकार से हम एजुकेट करें, विच वी आर डूइंग. हम लोग उनको वीडियोज दिखाते हैं, उनके काउंसलिंग करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, सो दैट दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड दे आर देयर टू फेस इफ एनीथिंग एडवर्स कम्स ऑन द वे. थैंक यू.
सो थैंक यू वेरी मच. यू हैव इन्यूमरेटेड द पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड आल्सो द सॉल्यूशंस दैट यू परसीव इन योर फील्ड इज यूजफुल. नाउ आई कम ऑन टू माई राइट साइड, डॉक्टर किरण बाला, who is a neurologist, and I think it matters a lot to your specialty. These patients who are coming either in the outside private practitioner or in the institutions, you think that their expectations has expectations have increased or their priorities have changed or it's something like because of the burden in the institutions. How do you perceive from their psychological mind of point of view?
Om Shanti. It's very true that expectations of the patients are increasing, and at the same time the resources may not be adequate at every place. It depends where you are working, whether in a smaller hospital or in a big institute. So we have to balance the situation and provide the best possible, whatever we can. Especially in neurological problems, where most of the patients think that there is no remedy. Recently I have shifted to PGI Rohtak. Initially I was working in Delhi for about 25 years. But I have realized this, that there is a great difference between the attitude, the knowledge, the awareness of the patients in Delhi and Rohtak. So what I feel is that to provide them the best services, we have to reach at their level of understanding. Only then we can provide them what they want. Just a simple example. We are running a disability clinic for certification. 99% of the patients who report there are not interested in taking treatment because they have a fixed idea that there is no treatment for this. And major chunk is stroke. When I first time came across such patients, it was shocking for me that there is hardly any secondary prevention for stroke. So what we have to do is that we have to increase their awareness. It takes a lot of efforts to make them understand that we can improve their quality of life. We have to make them aware what facilities are available. And on the other hand, there will be patients who will be demanding that we should get all right. Patients suffering for neurological problems for 20 years, they come and demand that you give something which should cure this illness. So again, we have to counsel them a lot and provide them education so that they can understand and make use of whatever best services are possible. So that's what I feel.
So Dr. Kiran, you highlighted two important points, that one, there is expectation is quite high, and secondly, possibly they have the fixed ideas not commensurate with the advances in the medical sciences. Before I come to the audience for their questions and their comments, I have a question to, can I afford to ask you? Yeah, okay. So you are working at the moment in the global hospital here and representing the nursing community. I think there are concerns also as far as the training of the nurses is concerned. I'm talking at all India basis, not particular to a particular center where you are working or XYZ would be working. Say competence level, their dedication, it is not only the doctor community but also the nursing community. It is a teamwork that we work in. And quite often, third issue, what we have noted, that possibly your training program is such that you believe more in completion of the paperwork rather than devoting time with the patient care. And that is true especially for emergency cases. So how do you perceive to these comments?
Om Shanti. आपने सही ये किया है कि कई बार हमें ये प्रॉब्लम आती है कि डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो कई बार हमारी नर्सेस हमें यही कहती है कि मैडम हम क्या करें, पेशेंट्स को नर्सिंग केयर दें या डॉक्यूमेंट करें. कई बार पेशेंट्स को केयर दी जाती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है डॉक्यूमेंट करने के लिए, लेकिन फिर उन्हें यही हम समझाते हैं कि फॉर देयर सेफ्टी, फॉर आवर सेफ्टी, हमें डॉक्यूमेंटेशन इज अ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ अडेज डॉक्यूमेंटेशन इज अ मोर इम्पॉर्टेंट। और साथ साथ अभी जो नर्सिंग सिलेबस है उसमें भी काफी सारे चेंजेस हमारे आ रहे हैं जो इन द बिगनिंग में नहीं थे। पहले ऐसे था कि जस्ट टिपिकल हमें नर्सिंग केयर देनी है वैसे दी जाती थी, लेकिन अभी प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेशंस कराकर हमें सिखाया जाता है कि क्यों इसका इम्पोर्टेंस है डॉक्यूमेंटेशन का। और साथ साथ हम ग्लोबल हॉस्पिटल में भी एक नॉट ओनली नर्सेस के लिए लेकिन जो पूरी हमारी हेल्थ टीम है उसके लिए हम वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच इस प्रोग्राम को भी रन करते हैं कि हमारे हेल्थ सेक्टर में वैल्यूज कितनी इम्पॉर्टेंस है और उस वैल्यूज को हमें कैसे यूज करना है। तो कई बार हमने देखा है कि इसके कारण भी हमारी नर्सिंग का जो लोड है वो थोड़ा कम हो रहा है और जो हमारी है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड नर्सिंग केयर दोनों का हम बैलेंस रख पा रहे हैं।
कॉम्पिटेंस लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वेरियस सेंटर्स,
तो सीएमईज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो बहुत जरूरी है कि सीएमईज पर हमारा पूरा फोकस होता है कि नर्सिंग को मना एज अ स्टाफ, पहले ऐसे था कि स्टाफ नर्स हो गया पूरा, लेकिन डे बाय डे नर्सिंग प्रोफेशन भी इतना एडवांस होते जा रहा है तो ट्रेनिंग्स भी हमारे होती रहे, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है और ऑन एजुकेशन सीएमईज भी कंटिन्यूशन में होते रहते हैं जिसका बेनिफिट नर्सिंग स्टाफ को बहुत मिलता है और जिसके कारण उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ती जा रही है।
थैंक यू डॉक्टर रूपा। सो आई थिंक बिफोर वी कम टू द सेकंड राउंड विद द पैनलिस्ट about how to manage this issue, what are the legal issues and how to improve the art of communication, what should be the coaching to the residents and the doctors which are missing in most of the centers as of today. Can I have some comments from the audience, please? Anybody would like? Yes, there is. Please, can you give mic?
Please come in front.
Cordless mic, you can, please. In fact, if there is somebody else to make a comment, can just line up. That will save time. We started already 20 minutes late and somebody said, okay, sir, we will oblige you by going 20 minutes early as well.
I must say that this is a very interesting topic that we are discussing here, as Dr. Gupta said. Though we are late, but our presence shows that many of us are still interested in it. I have worked as a psychiatrist in India and now I'm working in UK. So what I want to, we are discussing how to prevent dissatisfaction among the patients. But the very next step is patients will be dissatisfied or their attendants will be dissatisfied, whatever we may do, maybe with small percentage of people, small percentage of situations and small percentage of outcomes. Now, my feeling is that, number one, we are not well equipped to prevent that dissatisfaction, which we are discussing just now. The second step is, we are not well equipped to meet that level of dissatisfaction of the patients. Are we well equipped? One of the ways, as we were talking, is the spiritually inclined people, if we have got our documentation done, documentation is in place, that can help. But then the CPA came into picture, the courts came into picture, we doctors are dissatisfied with that, and so are the consumers, so are the patients dissatisfied with that. Do we have any mechanism for that? In the West, they are talking of PALS, that is Patient Advocacy and Liaison Services. From this August panel, I would like to discuss, can we in India consider that? Yesterday I was reading a news that in Bombay, the Bombay Medical Association, which has 4,000 doctors, they have employed a team of, I would call them bouncers or security guards or whatever name you give, and if you have any problem, you can make a phone call to them. So on the one extreme, our level of insecurity is that we are going for that. And on the other, we are thinking in these positive terms. So how is that going to impact, and can the Western model be of any relevance to that? Thank you.
Thank you very much, and this is exactly what I was saying, that before we come to all these issues, but it's nice that you highlighted, and the problems are no less in NHS program in UK. Yes, Dr.
Yes.
Could you identify for the benefit of everybody?
Let me first introduce myself. I am Dr. Girish Tyagi. I am the Secretary and Registrar of the Delhi Medical Council, which deals with the professional misconduct and negligence cases against the doctor. थोड़ा सा कमेंट यहाँ पर करना चाहूंगा कि जो हमारे पास आफ्टर द पासिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स बिकेम डिफेंसिव. सो उसके बाद जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप का जो एक पहले पायस रिलेशनशिप माना जाता था, कॉन्फिडेंस के ऊपर, फेथ के ऊपर, वो अब नहीं रहा. बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास, देन द पेशेंट हिमसेल्फ ट्रीट हिमसेल्फ टू बी अ कंज्यूमर. वो सोचता है कि मैं तो पे कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर हूं, और उसके पास अब अल्टरनेटिव भी हो गए. उसके पास पहले अल्टरनेटिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं पास हुआ था, अगर उसको कोई डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करनी होती थी कंपनसेशन के लिए, तो कोर्ट में जाता था. कोर्ट में ऑफकोर्स इट टेक्स अराउंड 10 टू 15 ईयर्स ऑफ, और वो केस डिसाइड भी नहीं होता था. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड जस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, की अपना जो स्पीडी रिड्रेसल उनको मिले. ऑफकोर्स मिलता नहीं मिलता, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उनके पास एक ऑप्शन हो गया है. आजकल आज की डेट में पेशेंट के पास ऑप्शन क्या है? उसके पास कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन है, पुलिस का ऑप्शन है डायरेक्टली, हाई कोर्ट का ऑप्शन है, मेडिकल काउंसिल स्टेट मेडिकल काउंसिल का ऑप्शन है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ऑप्शन उसके पास. सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शन टू डील विद द कंप्लेंट्स अगेंस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देन द कंज्यूमर अवेयरनेस इज नाउ वेरी मच मोर. इवन वी आर सीइंग दैट वेन द इन द डिसिप्लिन कमिटी वेन वी डिसाइडिंग द केस, वी कॉल द पेशेंट्स एज वेल एज द डॉक्टर्स ऑल्सो इन द मीटिंग. Then most of the time, patient came with the full knowledge, even sometimes it is seen that even the more than doctor of the knowledge. Then the consumer awareness, then of course commercialization. Once the commercialization is now, agar jo aaj ki date mein patient jo pay kar raha hai ek baar jaake, to usko lagta hai ki aur result usko satisfactory nahi hota. Satisfactory means ki satisfactory to the patient. Doctor ko ho sakta hai ki satisfactory lage, लेकिन वो पेशेंट को सेट तक नहीं लग रहा. मे बी न्यूरोलॉजिकल उसको रिकवरी, जो उसको फास्ट रिकवरी चाहिए थी उसने रिकवरी नहीं हो रही. उसके बाद एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि जो हमारे पास जैसे इनिशियली मेडिकल कॉलेज में थे एबीसीडी ऑफ दैट एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन डिफरेंस, इसी हिसाब से अगर हम उसको कम करना है तो हमारे को फर्स्ट ए इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर मटेरियल एक्सेट्रा एट द लेवल वेन द पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल. वेन इट इज सीन पेशेंट रीच द कैजुअलिटी, वहां पर डॉक्टर नहीं होगा या सिस्टर नहीं होगी या स्टाफ नहीं होगा या स्ट्रेचर नहीं होगा या
सो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द सर्विसेज, इम्प्रूव द सर्विस
एंड बिहेवियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. वी हैव सीन फ्यू केसेस, मैं एक दो आपको इंस्टांस वैसे बता रहा हूं डॉक्टर साहब. एक कैजुअल्टी,
आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू बीइंग इन द डीएमसी, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंप्लेंट्स कम एंड अकॉर्डिंग टू यू आई थिंक
बिहेवियर आपको ट्यून बता रहा हूं कि बिहेवियर को एक पेशेंट कैजुअल्टी में जाता है. सीरियस पेशेंट है, डॉक्टर उसको बुलाता है कि आइए डॉक्टर साहब, पेशेंट जी रहता है, डॉक्टर कहता है मर तो नहीं गया ना अभी, थोड़ी देर में
एक्जैक्टली. सो अगेन दिस इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज नो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन.
देन द कम्युनिकेशन इन द डॉक्टर्स, एज डॉक्टर्स वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू द पेशेंट, वी आर नॉट, देयर इज नो करिकुलम ऑफ द कम्युनिकेशन इन द करिकुलम एंड वी डोंट कम्युनिकेट. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हालत या प्राइवेट हॉस्पिटल में हालत होती है कि वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट प्रोग्नोसिस. Sometimes it is seen that the patient didn't explain, and ultimately death ke time pe who is communicating? Maybe the junior intern, house surgeon, and sometimes even the nursing orderly is explaining to the patient that patient has died. That leads to all of them. Then of course documentation, we are very poorly in the documentation part. Thank you.
Can you tell me from the DMC,
yeah,
a government hospital with 1000 beds, how many patients they are supposed to see in the OPD?
There are no guidelines. First of all,
okay, thank you.
These are no guidelines. No, first of all,
thank you. Then we can't blame the other side.
Yeah, doctor, एक बार अगर patient वहाँ पर जाता है, तीन अस्पताल में जाता है, अभी मैं कल परसों की भी media से खबर आ रही थी, patient went to the three hospitals.
Right.
Dying patient.
No,
आप उसको AIMS कहता कि admit नहीं कर सकते इसको, सफदर कहता admit नहीं कर सकते, and patient dies. तो media में जब बात उठेगी तो of course the public get outrage against the doctors. अल्टीमेटली हॉस्पिटल का क्या डॉक्टर्स के खिलाफ ही जा रहा था. अस्पताल में कौन पिट रहा होता है? डॉक्टर पिट रहा होता है. नोबडी सैड कि वहां पे नर्स पिट रही होती है या फोर्थ क्लास एम्प्लॉय पिट रहा होता है, डॉक्टर पिट रहा होता है. बिकॉज अल्टीमेटली अपोलो में जा रहा है वो डॉक्टर के नाम पर जा रहा होता है पेशेंट को.
सो टूडे द अटेंडेंट्स एंड द पेशेंट्स रिलेटिव्स दे हैव वेरियस ऑप्शंस एज ए इनिशिएटिंग पॉइंट कंप्लेंट अगेंस्ट द हॉस्पिटल और द ट्रीटमेंट और द डॉक्टर. So that is what the irony is. Yes, anybody else would like to make a comment? Brief one, please. Because as I mentioned, we are still to have the second round. And many points are to be covered.
करना चाहूंगा कि जैसे हम चीजों को आप जब भी अखबार में सब जगह पढ़ते हैं तो ये आता है कि डॉक्टर को पीट दिया या डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, स्ट्राइक पे चले गए. द अदर वे द पीपल आर नॉट अवेयर इन वट सिचुएशन वी आर वर्किंग. So that is the communication gap, because when the patient claims to us, so he has full faith in us and very high expectation. But we are not up to that, that is the problem. But if we show them ki what is our problem and media and others in normal community, we do the camps. But for doctor-patient relationship, we do very less of the camps. And the media plays very less role.
Good. If your point is taken. That needs to be strengthened.
So that should be?
Yes, miss.
Om Shanti, myself Dr. Preeti Jain. I am second year.
Say it loudly.
Dr. Preeti Jain, in the panel discussion it came out that the disharmony between learning residents and consultants, it's being reflected in doctor-patient relationship, because when they are dealing with the patient, the residents, and thereafter when they become consultant, because they were not fulfilled with their demands at that level. So it's being reflected. I personally feel that. When I see myself and my seniors, so might be very senior consultants, they are here. So I just wanted that, can this point be discussed in more depth, that can anything be done so that the residents could learn more, whatever, like, because
we will cover this point, but not at the individual level.
Yeah. In the generalized, I wanted to make that the efforts which the present students are making for getting that medical seat might be much more than what our seniors made. So the students are ready to learn, but sometimes from the other side, might be because of the private practice which is going on, it's creating some trouble.
Okay, so this is the point. Possibly that you are not getting that kind of attention for the... Okay.
Even in the government colleges.
Okay, important point. Anju?
I am Anju Gambhir, pediatric surgeon, and you being a pediatric surgeon, there is one aspect dealing with the parents of children who are sick and undergoing surgery. I'd like your comment, but before that I'd just like to say that though the ABC is important, availability, behavior, competence of a doctor is important, what one must understand today is that I have done something maybe and I know a present situation and I have faced that situation, dealt with it. But tomorrow, we are also realizing today that the patients are not only net savvy, but they have this habit of what we call doctor shopping. Just when there is something going wrong, they are going and getting information from somebody who is probably not even aware of what transpired. So we as doctors, I think, need to be very careful about making loose talk, giving comments about things we do not know, because that also hinders the actual relationship between the doctors and the patients.
So you are talking that yes, anybody who comes on the front line has to be knowledgeable about it and can't afford to say
cannot afford to give.
So that you lose
comments without being aware of what actually happened anywhere.
There is always a way to communicate. Okay, all right, wait for 2 minutes. I will talk to my senior and then come back.
Yes, or you could even communicate with the concerned person. I think that is the best way out. Find out what is the situation and then get back to the patient. Well, this was it and I think this was it. So that makes things easier for both.
And thank you also pointing out the corporate sector vis-a-vis government one.
Yeah.
Next, please, I think that's important. We are having very good feedback, I must say.
Good evening, everybody. I am Dr. Satish Tyagi. As far as doctor-patient relation is concerned, the most important part, apart from the communication skills, availability of the resources, deficiency in the doctor, or changing behavior of the patient, is one more important thing which we observed is the loss of trust between the patient and doctor. So as an organization, what this organization can do to build up this lost trust among the patient and doctors? This is my question to you. And second suggestion is, as you have taken up a program, very nice program in morning, I have heard that to reduce the drug addiction or addiction of everything, why not start a program to build a patient-doctor trust? Means trust in the mutual relationship. This is my question to you. Thank you.
Next.
Good evening, sir. I am Vardhan here, professor in SOD anesthesia from Mumbai. My question is a technical question. A patient was admitted to the ICU and he was diagnosed with myocardial infarction. Patient was thrombolyzed and started on dopamine drip. And since the hospital doesn't have the facility for the angioplasty as well as the CABG, patient was referred to higher center. And while transferring the patient from one hospital to another hospital, in the ambulance patient died. And he was declared dead when he reached to the next hospital. Now patient party is telling we want the death certificate. Now how to clarify this? Who is supposed to issue? Because when the patient started from hospital A, he was alive. And when he was in the ambulance, they say we don't know about the patient, we just transferring the patient. And the hospital B is telling patient was brought dead here. So how to deal with this situation?
Very how simple. Wherever the patient goes and the patient is no more, that hospital is supposed to give the death certificate, not the previous hospital.
Okay.
Whether somebody gives or doesn't give, that is a different matter. But liability is on that hospital or a doctor or a nursing home or a corporate hospital where the patient lands up and that his pulse and BP is no more and the patient is no more. That's
fine. Thank you.
That is what the legal sanctity would be. The last one, then we will just wind up because many of us have to come in the morning.
Om Shanti. मैं डॉक्टर सुरेंद्र राय मैं पटना से हूँ मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ एक्चुअली ये टॉपिक बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी से हम लोग चूँकि यहाँ पर डिस्कशन में हमेशा स्पिरिचुअल पार्ट आ रहा है तो एक प्रोफेशनल हैजार्ड ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर्स इसको मेंटली एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए जैसे कोई भी प्रोफेशन है उसमें एक प्रोफेशनल हैजार्ड या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है तो डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन इतना ना होता है कि सब फॉल्ट मरीज में रहते हुए भी कुछ होता है तो डॉक्टर्स पर आ जाता है तो हम लोगों को मेंटली भी रेडी रहना चाहिए कि भाई अगर कुत्ता काटता है तो हम कुत्ता के पीछे दौड़ते नहीं उसको हम मारते नहीं उसी तरह से अगर कुछ घटना घटती है तो ऐसे पूरे सॉरी
ठीक कह रहे हैं आई थिंक दिस इज द पॉइंट दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड आई विल कम बैक टू द पैनलिस्ट सो आई थिंक फोर फाइव इश्यूज दैट हैव कम अप increased awareness among the attendants or the parents, easy accessibility to file complaints, many times incited, many times encouraged by the other party and their friends, relatives or our other professional colleagues in the law. That's also a known fact. A person who comes to the corporate hospital pays through the nose. And especially if the end is not good, they will try to create ruckus. Recently, one of my friends working in Delhi in a hospital confided that yes, when the patient is going to be discharged, four or five attendants suddenly will appear and they will create chaos. If exemption requested not done, at least they will try to reduce the expenditure. So this is also an art on their part to create chaos to get the refund of part of the money. On the other side, in the government sector, where still there is a lot of chaos, lot of rush, lot of mismanagement, let me say, the problems are from a different angle. It is the lack of communication as well as lack of immediate management and so the dissatisfaction. So I think these are the issues. How to handle these issues? Now let us summarize to this. What have been done at a particular place in your view? What can be done at other places? Somebody had very aptly raised that in our country the level of training and teaching is not uniform. Quality of care, not uniform. Most of the states still have the facility for having private practice. Few places they don't. And the point that has come out is possibly that when you involve in private practice, that you are giving less time to the teaching trainees. There used to be a time, I have some personal experience from KGMC Lucknow, a 105-year-old university now. This institution was known that despite people having private practice, they used to devote their full time to the institution from morning till evening or till whatever is required. Very faithfully, sincerely, with never filtration of the patient from A to B, B to A. Now the things have changed. Maybe this is a part of the national character, national culture. So, I come back to Dr. Usha. How can we take care of some of the problems that have been highlighted? How the residents can be told about the art of communication? How can we conduct some courses so that they are refreshed with some of these problems and they are prepared to handle them?
One thing I'll tell, main apne experience se batati hu aapko, that this holistic approach jo yahan sikhate hain, and Rupa Ben has already said about Vihasa, value education, that should be must. But logo ko kehna it should be must, I think we learned ki hume apne se start karna hai. So being in cardiac center and exposed to high risk patient, and being an anesthesiologist, usually kehte hain anesthesiologist to parde ke piche hota hai. And I think I know each and every patient, and that is because I've been taught over here. I've been attached to Brahma Kumaris for a long time, and responsibility, sincerity, all values have been taught to me to make it practical. So, maine dekha, I'll tell you one example, that ek patient ko surgery karte hue, five months child, ventricular septal defect, jab wo bahar aaya, Saturday ka din tha, everybody in a hurry, jab wo bahar aaya, to uske dono foot pe, there were big, big blisters. And by the time shifted to ICU, I went over there, the surgeon told me, "Dekh liya?" I said, "Dekhti hoon main." Dekha, it was definitely a blister. He was about to lose temper. I said, "Don't lose temper. Just shant ho jao. Let me see the cause where it is. It's blister. Take care of the patient. 1:30 ho gaya. Immediately call. Store band nahi ho jana chahiye. Have patience. Sare dawai manga lo. Ek dawai bhi patient se nahi aayegi. Just cool down." And the way that child was managed so carefully, I'll tell you, usko, he was just a driver. Usko clearly bata diya ki aise aise warmer tha, jo warming blanket hota, usko disconnect ho gaya hoega, ye seedha blow udhar aa gaya hai. But nothing to worry, it's not a cautery burn, it's just blister. Ek mahina wo hospital mein raha, aur last mein uska bachcha ghar nahi jata tha. Usko discharge kar diya, wo mummy roti hui aage, kehti ghar mein jaate nahi, wo itna achha used to ho gaya yahan pe. The way the care was given by everybody. So I will not say it's something my effort, it's a team effort. And we should always be in a team. Don't expose ourselves, isne kiya, usne kiya, which is the common problem in government as well as private sector. So we have a holistic program. Pehle ja ke patient ko dekhte hain, and I tell my resident, "Did you talk to the patient? Usko bataya tumhe kya problem hai? Usko pucha kitne baje khaya tha, kitne baje karna hai?" It's just that an anesthetist to give anesthesia, I think it's your responsibility to take care of the patient fully. And believe it, last mein wo humse puchne aate hain ki hamara patient theek hai, theek ho jayega. That is the trend we have to set. And definitely, once we visit from this place, we realize that is more responsibility of our positive and with the positive aura to them. And they understand, they will never go to the legal things.
So I think this is one way, the communication with the parents, gaining their confidence post-operative problems or problems during the hospital stay are minimized if not completely reduced. The art of communication. Residents joining any institution for training, they have never been exposed how to communicate. Nobody has taught them. MBBS was not the time. Internship, nobody works, except preparing for the post-graduation. So there is a major shift in lack of training, lack of communication. How this can be compensated? I think at least I am aware at two places, in KGMC Lucknow and in AIIMS New Delhi, all the residents who join the postgraduate programs, all residents, all registrars who join the institution, they are exposed in the first few weeks of their joining with the program, de-stressing that these are the problems in the major institution, what are the problems they are likely to face, how to de-stress, the art of communication with the parents, with the attendants, and with the doctors, also interpersonal relationship, very important. And third one is how to deal with the time of crisis, the near-death syndrome. So all these things are told to them in a regular training, teaching program, either in extra hours or in Saturday afternoons when the hospital timing is over. So I think these are some of the ways, and these are the things that practically all institutions, all medical colleges, they should have all that. Dr. Gupta, you would like to say from this front that the issue which is coming for the CPA, for lawsuits, for advocates encouraging the parents, 50-50 and all that.
एक्चुअली में जो भी प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉब्लम लेकर के ही हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, तो हमें उनको सॉल्व करना है. उसके लिए हमें एक अपने जो स्टाफ है, सबॉर्डिनेट स्टाफ्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं, उनके साथ में बैठ करके हमें उनके ऐसी फीलिंग क्रिएट करनी है, जैसे कहा कि एक हारमोनियस फीलिंग हो और एक होलिस्टिक अप्रोच हो उसके अंदर. होलिस्टिक में टोटल ही नहीं कि सब सिम्टोमेटिक ही हो. जैसे मान लिया कोई भी पेशेंट आते हैं कहीं पर, चाहे आपके डायरेक्टली वार्ड में है, इंडोर में है, आईसीयू में है, या इमरजेंसी के अंदर आते हैं, समटाइम्स द कंसर्न स्पेशलिटी डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल और इज गोन टू सम वॉशरूम और समवेयर, तो इमीडिएटली देन एंड देयर जो भी डॉक्टर वहां अवेलेबल हो वो उसको अटेंड कर ले, ये ना कहे कि वो डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है. तो प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम हेयर, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पर ऐसा ना हो. फिर ये होता है कि भाई उसको कहीं पर रेफर भी किया गया है, मान लिया कहीं व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है, स्ट्रेचर वाला अवेलेबल नहीं है, या कोई और बात है, तो किसी को भी कंसर्न करके उस बात को आप इधर उधर करके उस बात को रफा दफा कर सकते हैं, बजाय कि उसको हाईलाइट करें हम, और उसको इमरजेंसी बेड पर ही लेटा करके उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं. फिर ये है कि अगर उसके लिए कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज अवेलेबल है, जैसे पहले बताया गया कि एबीसी का होना बहुत जरूरी है, अवेलेबिलिटी हो, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी इत्यादि हो, लेकिन उसके साथ में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है हमारा है. उसमें ये ना हो एक इंटर डिपार्टमेंटल कोई कॉन्फ्लिक्ट लेकर के हम बात को खत्म खड़ा कर देते हैं, ऐसा हम ना करें, बल्कि उसको देन एंड देयर पैचअप करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक बात यहां पर उठती है तो उस बात उठ करके फिर वो वॉलेटाइल बन जाएगी वहां पर. अब जैसे एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक पेशेंट सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट का था एंड अबाउट 85 इयर्स ओल्ड एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन टू द अटेंडेंट्स कि भाई ऐसा ऐसा पेशेंट जो है हालत खराब है एंड वी नेवर नो कि भाई ये कितना ठीक होंगे, बट स्टिल वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट. तो एनी हाउ मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो जब इमोशनली वो अपीवल उसमें होता है कि पेशेंट जो है एक्सपायर हो गया, तो एकदम आउटबस्ट सभी अटेंडेंस का होता है चाहे जो भी हो, तो उस वोलेटाइल को हमें खत्म करने के लिए उसको हमें जो है घी नहीं डालना उसके ऊपर, बजाय कि वी हैव टू बी वेरी पीसफुल एंड लिसनर, पीसफुल लिसनर हो उसके साथ में हो. उसमें हुआ क्या कि गलती से उसने कह दिया कि भाई तुम्हारे डॉक्टर ने परवाह नहीं करी है, ये है वो है करके, और वो जो अटेंडेंस थे उन्होंने, डॉक्टर जो अटेंडेंट था जूनियर या रजिस्ट्रार थे, उसने अगर कह दिया तुम ऐसे कैसे कहते हो, बस वहां पर बात बिगड़ गई. फॉर्चुनेटली आई हैपन टू बी देयर, मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने कहा कि सर ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं है. आई टुक देम टू माय रूम ऑफिस, वहां पे उनको बैठ के बात की कि साहब आप भी तो ऐसे बात कर रहे हो, क्या ये हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते थे क्या, अब इसमें किसकी फॉल्ट है ये. तो अगर हमें अपना भी तो देखना है, थिंक दैट ही इज योर किथ एंड किन जो हु हैज बीन सर्टिफाइड, कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई भी पेशेंट आ रहा है तो आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर और सिस्टर स्पिरिचुअली. तो भाई जैसे कोई भाई बोल भी रहे थे कि स्पिरिचुअल इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, कि अगर वो हमारा ब्रदर और सिस्टर है तो उसको मुझे उसी डिवोशन से उसकी सेवा करनी है जैसे कि मैं अपने आप को चाहता हूं. कल को मैं जाऊं कहीं पर और मेरे उसकी परवाह ना हो तो मैं कितना बुरा लगता है उसके अंदर. तो इसलिए हमें इन प्रॉब्लम्स को सोल्व अपने लेवल पे बड़े आराम से कर सकते हैं अगर इफ वी कंसीडर कि दैट आई हैव टू बी फर्स्ट माय पेशेंट देन माय अदर थिंग्स. और होता क्या है, इनवेरिएबली आप देखेंगे डॉक्टर साहब, आउटडोर्स के अंदर, कैजुअल्स के अंदर जब कोई पेशेंट सीरियस आता है तो वी आर जस्ट आई एम हैविंग ए सिप ऑफ टी, कप ऑफ टी. क्यों? पेशेंट को नहीं देख रहे हैं. पहले चाय पीना बहुत जरूरी है आपका. अरे भाई उस टाइम पे चलो, अगर हमने पीना भी है कोई बात नहीं है, एक डॉक्टर तो आके अटेंड करें वहां पर. ये होता है वहां पर, ये बर्निंग प्रॉब्लम है आजकल की. तो हमें ये, जब तक हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी और ये प्रॉब्लम इसका कोई एंड नहीं है कभी भी. और अभी जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना बीमारियां जो जो दवा करते गए मर्ज बढ़ता चला गया, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी. और इस बीमारियों को निवारण करने के लिए हमें वी हैव टू बी वेरी क्लोज टू द पेशेंट एंड उनको अपना किथ एंड किन समझ करके अगर हम ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट है खत्म हो जाएगा. और उसका एक्सप्लेनेशन, प्रोग्नोसिस उसका जरूर एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे ये बात है, ऐसा हो सकता है. और उसको नोट भी करवा लिया जाए कि भाई ये हुआ है, ऐसा हो सकता है.
आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज यू हैव गिवन, दैट एक्सपीरियंस मैटर्स एंड एक्सपीरियंस शुड नॉट बी कैप्ट इन रिजर्व, शुड कम ऑन द फोर फ्रंट टू डील इन सच सिचुएशन. एंड ऑफकोर्स सेकेंड पॉइंट इज दैट दीज फ्रेशर्स हु पॉसिबली डू नॉट हैव द आर्ट टू कम्युनिकेट और आर्ट ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज टू communicate, they must be told, and this is the responsibility of the senior persons. Madam, you would like to add something? Please. Briefly, because by 10 o'clock we should say goodbye.
Just simple, I would like to say, we should always remember TLC. जैसे ही हमारे पास हमारे juniors आते हैं, हमें उन्हें सिखा देना है कि tender loving care, we are here, ये सब हमारे लिए यहाँ पर आते हैं और हमारे अपने हैं. कुछ भी हो, हमें किसी भी एक्सटेंड तक जाकर उनको सर्व करना है, प्यार से सर्व करना है. कई बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आई हैव कम अक्रॉस विथ सम प्रॉब्लम्स कि उनके साथ इतने टेंशन्स और स्ट्रेस चल रहे हैं कि वो सारा जो हाउल करते हैं, अगर वो मिसबिहेव भी करते हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम विथ देम ऑल्सो. So it is our foremost duty to talk to our whole staff because it is also a family. जैसे घर में family होती है, हमें वहां पर भी एक family की तरह बैठकर एक दूसरे की problems को सुनकर solve करना चाहिए so that we do not deliver a bad behavior with our patients. We can improve our services like anything. हम लोग pre-operative, post-operative, जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये सब भी हम लोग प्रॉब्लम्स बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड आई हैव लर्न दिस आर्ट थ्रू मेडिटेशन ओनली, क्योंकि हम भी बड़े इरिटेबल हो जाते थे, लेकिन यहां आकर अपनी असलियत जानकर कि हम हैं ही प्यार, हम हैं ही शांत, हम हैं ही सुखदाता के बच्चे. सुख स्वरूप तो देना है और लेना है, ये भी एक हमारे से बहाना है कि लोग मिलने आते हैं, आज कुछ है तो दे दो, जो कुछ कर गुजर सकते हो तो कर दो. कितना कितनों का भला हो जाएगा, कितने परिवार टूटने से बच जाते, हमारे लिए एक और फैमिली बन जाती है ना. दे आर लाइक अवर फैमिली मेंबर्स एंड आई हैव सीन वी हैव सेटल्ड फैमिली प्रॉब्लम्स ऑल्सो. जो लेकर के आते हैं बार बार एडमिट होते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ, वो बीमारियां भी ठीक होती हैं विच वर क्रिएटेड ड्यू टू सम from family disputes. So it's a wonderful knowledge which has imparted me so much to deliver to our patients. Kabhi bhi koi hangama khada nahi hoga. Thank you.
So kind of you. Thank you for very much for highlighting the role that proper management, due care, good contact, satisfying your clients, and also the role of discourses that we have had, especially in the afternoon session from Usha ji and Shivani Ben, that how to remain cool, composed, and when you are cool, composed, contented, you are bound to deliver your best without losing your temper. Well, friends, gentlemen, just 2 minutes and the last comment from our colleague, Dr. Kiran Bala.
Thank you. I'll just like to add one comment, especially about our junior colleagues. In addition to their training
and teaching, we need to empower them spiritually. That's also our duty. Being senior teachers and their seniors in the wards or the department, it's our duty to take care of them also as our children. They should feel secure and they should have trust so that the whole team works as a family. And if there is anything goes wrong, we should be there to support them and they should have full confidence in them. For that, we can also have some training programs which we have also learned over the time, and we have been, you will also experience during this conference that Brahma Kumaris can help a lot, and this is a need of the time that they should be mentally and spiritually empowered to face the changing situations. The things are changing very fast and the life has become very hectic. The burden is there. They are always thinking of their career as well as their responsibilities they have to perform. So it's at times difficult to maintain the balance. They need to be taught this art also. Thank you.
Thank you very much.
I think this is my pleasant duty to thank all the panelists who participated actively and shared their experiences on this important subject, and not to forget that wonderful and patient audience.
One sir.
Thank you very
sir,
much.
Please, one minute. Om Shanti. I am a gynecologist practicing in Bathinda, Punjab, and I have made a meditation room in my hospital. Before taking the patient for surgery or for the delivery, we ask the patient to go there and bow down, and the attendants of the patient are asked to sit in the meditation room, and by the time we are doing the surgery or the delivery, and they are sitting in the room and they are blessed with something ki hame pata nahi laga ki kab case ho gaya, hamara patient bahar aa gaya. I had a very wonderful experience with this type of thing. Thank you.
Wonderful. Thank you very much. Just abhi ek minute hum sabhi Parampita Paramatma ki yaad mein baithenge aur good night karenge, aur kal morning meditation 4 o'clock Shivani Bhan guided meditation karengi, to aap sabhi se request hai ki sabhi samay par aa jaiye. Om Shanti, good night. पर्सन है डॉक्टर गुप्ता जी, डीके गुप्ता जी. मैं डॉक्टर एमडी गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका सम्मान करें और आप सभी तालियों से उनका स्वागत करें. नो सर प्लीज.